हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झरने के किनारे बैठकर बात करते हुए वीरेश के दोस्तों ने उसे बताया कि वो लोग सब मिलकर उसे गुरुजी के आदेश पर वहां से वापस आश्रम ले जाने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनकर चंद्रिका और वीरेश दोनों ही परेशान हो गए, और वीरेश ने पहले ही मन में ठान लिया था कि वो राजकुमारी को ढूंढने बिना यहाँ से आश्रम वापस नहीं जाने वाला। इसलिए तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए उसने उनके साथ जाने के लिए मना किया। वीरेश के मना करने पर उसके दोस्तों में से वैभव ने कहा, हाँ ठीक है, हमें पहले से ही पता था कि तुम इस तरह आसानी से हमारे साथ वापस नहीं आने वाले हो। इसलिए वैभव ने भी अपनी जगह पर उठकर खड़े होते हुए और वीरेश की तरफ आगे बढ़ते हुए ये बात बोली। तो उसकी बात सुनकर वीरेश ने तुरंत ही अपने हाथ आगे की ओर और उसके हाथों से वहीं सुनहरी रोशनी निकलने लगी, और धीरे धीरे उसे रोशनी को वीरेश ने अपने और चंद्रिका समर के आसपास एक सुरक्षा घेरे में बदल दिया। चंद्रिका ने समर के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ है और उसकी बाजू पर अपना दूसरा हाथ रखे है, और समर भी चंद्रिका के एकदम नज़दीक ही खड़ा है, क्योंकि उन बाकी लोगों की बातों की वजह से वीरेश और समर चंद्रिका तीनों को यही लग रहा है कि वो लोग कैसे भी उन तीनों को यहाँ से वापस ले जाने के लिए आए हैं, और इसके लिए वो लोग भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वीरेश को ऐसे अपने बचाव के लिए तैयार होते देख सक्षम, वैभव, शिवानी, व्योम और वहां पर जितने भी लोग थे उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों से एक दूसरे को कुछ इशारा करने लगे। उन सब को ऐसे आंखों आंखों में इशारा करके बात करते देख वीरेश थोड़ा सा घबरा गया और उसी तरह से अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, नहीं, तुम सब ये जो कुछ भी सोचकर आए हो वो बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम लोगों को कोई चोट नहीं पहचाना चाहता और न ही तुम लोगों से लड़ना चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम सब इस सफ़र में मेरा साथ नहीं दे सकते तो यहाँ से वापस चले जाओ। अब वीरेश इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसे पता अपने सारे दोस्तों की ताकत से मिलकर वो अकेला जीत नहीं सकता। इसके अलावा वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं अभी उसे अब तक समझ नहीं आया। वीरेश बहुत ही ध्यान से हुई नज़रों से उन लोगों को देख रहा था। चंद्रिका, समर को उसने अपने पीछे छुपा लिया है और उसे पीछे करते हुए बोला, राजकुमार चंद्रिका, आप दोनों मेरे साथ मेरे पीछे ही रहना। वीरेश ने जैसे ही राजकुमार समर का नाम लिया तुरंत ही राजकुमार का ध्यान भी उनकी तरफ हुआ और वो बोला, हाँ हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोगों को कुछ मत करना, हम पहले ही बड़ी मुश्किल से उसे चुड़ैल के जाल से बाहर निकले हैं। इतनी देर के बाद समर ने आखिर कुछ बोला और इतना बोलते हुए वो काफ़ी घबराया हुआ भी लग रहा है। उसे ऐसे घबराते देख सभी की नज़र उसकी तरफ हो गई, सबसे ज़्यादा तो चंद्रिका की। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं राजकुमार, कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों को, देखिए अब तो हम बिल्कुल ठीक हैं ना, और वहाँ से दूर भी। चंद्रिका की बात सुनकर समझते हुए समर ने धीरे धीरे से अपना सिर हिलाया और इतनी देर से वो सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो सब कुछ देख सुन रहे हैं। इतनी देर से वो लोग जिस तरह से चुप थे अब उन लोगों से रहा नहीं गया, और सक्षम एकदम ही शिवानी की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, देखो कैसे डर रहा है या फिर हमला करने की पूरी तैयारी में लग रहा है। ओए वीरेश, तू सच में हम सब पर हमला करेगा क्या? इस तरह हंसते हुए सक्षम वहां वीरेश आगे की तरफ आता हुआ बोल, और उसकी बात सुनकर वीरेश के चेहरे पर एकदम ही हैरानी के भाव आ गए। इतना बोलते हुए आगे आकर उसने भी वीरेश के एक कंधे पर अपना एक हाथ रख तो वीरेश उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा, क्या हुआ? इसका मतलब तुम लोग मुझे वापस आश्रम नहीं ले जा रहे हो क्या? और मैं तुम लोगों पर कोई हमला नहीं, सिर्फ अपना, राजकुमार और चंद्रिका का बचाव कर रहा था, लेकिन अब तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो इस तरह से? अरे नहीं, कुछ नहीं, हम सब बस तुझे डरा रहे थे। असल में से हम में से कोई भी तुझे जबरदस्ती आश्रम वापस ले जाने के लिए नहीं आया है। हाँ, हमने गुरुजी से वादा जरूर किया, लेकिन गुरुजी ने हमें 5 दिन का वक्त दिया है और इन 5 दिनों में हम सब मिलकर वसुंधरा को जरूर ढूंढ लेंगे, है ना? इस बार वैभव ने भी आगे आते हुए कहा। वीरेश, चंद्रिका और समर को उन लोगों की बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ जो कुछ भी अभी अभी उन लोगों ने कहा, और वो लोग पहले से ही परेशान थे। अब उनकी ऐसी बातें सुनकर वो तीनों और भी परेशान होते जा रहे हैं। उन सबको ऐसे परेशान देखकर वो सारे लोग आ गए हैं और एक गोल घेरा बनाकर बैठकर वीरेश वहां पर बीच में बैठा, और उसके सामने शिवानी आकर बैठी और उसने वीरेश को पूरी बात बताई जो भी उसके जाने के बाद वहां पर आश्रम में हुआ और किस तरह से राजा और उसके सिपाही मदद के लिए आए थे, लेकिन सक्षम ने उन लोगों को साथ आने नहीं दिया। हाँ, अच्छा किया, वैसे भी सिपाहियों के साथ होने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, उल्टा उनकी जान बचाने में भी हमारी काफी ऊर्जा चली जाती है। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वीरेश ने सिर्फ इतना कहा, उन लोगों से बात करके अब उन सबको सारी चीज समझ में आ रही है। और तभी एक गहरी सांस लेते हुए सक्षम ने कहा, ठीक है तो फिर बताओ आगे क्या करना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं इस सफर में और हम सब मिलकर राजकुमारी को जल्द ही ढूंढ लेंगे। शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम सब इसी तरह से मेरे साथ रहोगे तो जरूर हम लोग ढूंढ लेंगे। और सच कहूँ तो आगे क्या करना है कि हमें कुछ भी खुद नहीं पता है और हम लोग बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तुम में से अगर किसी को कोई भी ऐसी जगह पता हो या कहीं से तुम्हें नकारात्मक शक्ति होने का एहसास हो रहा हो तो हम सब उसे तरफ जाकर देख सकते हैं। वीरेश ने उन सभी को समझाया और उसके बाद वो सब फिर से एक तरफ ही वहां से आगे बढ़कर वहां जाने से निकलने से पहले उन लोगों ने ठीक तरह से पानी पर अपने साथ पानी भरकर भी रख लिया, जिससे कि अगर वो लोग ऐसी किसी जगह फंस जाए तो कम से कम उनके पास पीने के लिए पानी होगा। वीरेश को ऐसे करते देख सारे लोगों ने ही ये बात किया और वीरेश अब खुश था कि कम से कम अब वो अकेले नहीं है, उसके इतने सारे साथी उसकी मदद करने के लिए वहां पर उसके साथ हैं। दूसरी तरफ शैतानी काली अंधेरी एकदम ठंडी और बड़े बड़े ऊंचे नीचे तैरे पत्थरों से भरी हुई वो गुफा, वहां पर अभी एकदम ही खामोशी है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। भानु दूर बैठा हुआ विक्रांत की तरफ देख रहा है जो कि पेट के बल वहां एक पत्थर पर लेटा हुआ है और जो भी उसे चोट लगी थी वो उसके बारे में तो नहीं लेकिन वसुंधरा के बारे में ही सोच रहा है। बस दो दिन और दो रातें और उसके बाद से तुम्हारी भी सारी शक्तियां मेरी होगी राजकुमारी और तुम्हें यहां से कोई भी लेकर नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। विक्रांत मन ही मां अपने आप से बात करता हुआ बोल और इस बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भारी तिरछी मुस्कान आ गई जो कि भानु से छुप नहीं पाई क्योंकि उसके अलावा अभी और कोई भी यहां पर नहीं है। भानु उठकर अपनी जगह से आगे आया और विक्रांत को इस तरह से मुस्कुराते देखकर वो परेशान होता हुआ बोला, मालिक आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या आप अपने सेवक को बताना नहीं चाहेंगे? भानु के पूछने पर विक्रांत का ध्यान भी उसकी तरफ हुआ, नहीं तो अपनी सोच में डूबा हुआ वो सच में काफी खुश लग रहा था और कुछ देर के लिए अपनी चोट और दर्द के बारे में भी बिल्कुल ही भूल गया था क्योंकि अब उसकी चोट पहले से सही हो रही है।
विक्रांत एकदम ही अपनी जगह पर उठकर बैठ गया, उसने भी अभी अपने पूरे शरीर में ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं पहना हुआ है लेकिन उसके बैठे ही उसकी गर्दन के नीचे पीछे पीठ पर बना हुआ एक निशान नजर आया जिस पर अजीब सा कुछ बना हुआ था लेकिन काले रंग का वो निशान एकदम साफ नजर आ रहा है उसके पीठ पर बना हुआ। कहानी जारी है, क्या सच में वीरेश के दोस्त अब उसकी मदद करेंगे और क्या वो सब लोग साथ में मिलकर वसुंधरा को जल्दी ढूंढ पाएंगे, रास्ते तक पहुंच पाएंगे और क्या वजह है विक्रांत के मुस्कुराहट की और उसकी गर्दन का वो निशान?